नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 29 जनवरी 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, पीड़ा और त्रासदी को पीछे छोड़कर 2021 को बनाना होगा संभावनाओं और उम्मीदों का साल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएन महासचिव का आह्वान। भारत में व्यापक पैमाने पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी, लेकिन एहतियाती उपायों को अपनाते रहना भी है जरूरी। कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद भी स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों की देखभाल के लिए नए दिशा निर्देश, और पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए युवा किस तरह कर रहे हैं प्रयास, सुनिएगा एक खास रिपोर्ट। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। एक वर्ष पहले 30 जनवरी को नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वास्थ्य खतरों का सबसे ऊंचा स्तर है। एक साल बाद अब तक कोविड-19 के 10 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 21 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी के पहले 6 महीनों में जितने संक्रमणों की पुष्टि हुई थी, उससे कहीं ज्यादा मामले पिछले 2 हफ्तों में सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा,
Now vaccines are giving us another window of opportunity to bring the pandemic under control. We must not squander it.
वैक्सीन हमें इस महामारी को काबू में लाने का एक और अवसर प्रदान कर रही है, हमें इसे नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी ने दुनिया में व्याप्त विषमताओं और खामियों को उजागर किया है, और जिन औजारों से इस महामारी का अंत हो सकता है, वही औजार इन असमानताओं को और गहरा कर सकते हैं। वैक्सीन राष्ट्रवाद के खतरों के प्रति फिर आगाह करते हुए उन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस टीकों के न्याय संगत वितरण पर जोर दिया है। इसी सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस में उन मरीजों की स्वास्थ्य दिक्कतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के कई महीने बाद भी इसके लक्षणों से पीड़ित हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि कोविड-19 के पुष्ट और संदिग्ध मामलों में संक्रमण ठीक होने के बाद भी पीड़ितों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोविड-19 से संक्रमित ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो संक्रमण से उबर जाने के बाद भी अनेक महीनों तक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन लक्षणों में बेहद थकान का अनुभव होना, लगातार खांसी होना और कसरत न कर पाना है। इस अवस्था को लॉन्ग कोविड या लंबी अवधि का कोविड कहा जाता है। कोविड-19 जनित स्वास्थ्य अवस्थाओं के प्रति ज्यादा समझ विकसित करने को यूएन स्वास्थ्य संगठन ने अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया है। अन्य सिफारिशें भी पेश की गई हैं, जैसे कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में रक्त की धमनियों में खून के थक्कों को जमने से रोकने के लिए कम मात्रा में खून पतला करने वाली दवा की खुराक दी जानी चाहिए। घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे मरीजों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल को अहम बताया गया है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी की जा सकती है। अस्पतालों में भर्ती और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मदद ले रहे मरीजों को पेट के बल लिटाए जाने को बेहतर बताया गया है, ताकि ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाया जा सके। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिगो ऑफ्रेन ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण मुहिम एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य औजार है, लेकिन इसके समानांतर भारत में बुनियादी स्वास्थ्य उपायों को भी अपनाया जाना जारी रखना होगा। उनका कहना है कि भारत जैसे विशाल, विविध और घनी आबादी वाले देश में भी संक्रमण के मामले घटाने में ये उपाय बहुत प्रभावी रहे हैं। यूएन न्यूज के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी टीकाकरण से लोगों की रक्षा करके हासिल की जानी चाहिए, न कि उन्हें बीमार बनाने वाले वायरस के संपर्क में लाकर। दिल्ली से हमारी सहयोगी अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई, जिसमें पहले दिन ही 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार को पूरा सहयोग दिया। WHO ने देश भर में टीकाकरण के काम में जुटे 2500 से अधिक कर्मियों और टीम के 4,75,000 सदस्यों को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा मुख्य रूप से WHO की भूमिका परिचालन, दिशा निर्देशों के विकास, निगरानी, जांच और टीके के बाद प्रतिकूल असर की घटनाओं पर नजर रखने की रही। भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफरिन ने बताया,
WHO India, including myself, have participated in dry runs preceding to the
भारत में UN स्वास्थ्य एजेंसी ने टीकाकरण अभियान से पहले उसके अभ्यास ड्राई रन में भाग लिया, जिसमें मैं स्वयं शामिल था। इससे हम उन दिशा निर्देशों और प्रशिक्षण सामग्री को भी आजमा सके जो हमने निर्धारित किए थे। तीन चरणों में हुए इस ड्राई रन के दौरान, जिनमें से अंतिम 8 जनवरी को था, हमने कोविन नामक IT सक्षम ऐप का उपयोग किया। उसके जरिए टीकों के प्रबंधन, लाभार्थियों के पंजीकरण, लाभार्थियों को अलर्ट भेजने, टीकाकरण कवरेज की रिपोर्टिंग करने और उसके बाद प्रतिकूल घटनाओं के मामले सामने आने पर उनसे निपटने के लिए वास्तविक समय में फीडबैक दिया। लॉन्च के बाद से अब तक पूरे देश में संगठन के कर्मचारियों द्वारा 15,000 से अधिक COVID-19 टीकाकरण सत्रों की निगरानी की गई है। ये सारा फीडबैक वास्तविक समय में दिया जाता है। हर शाम सत्रों की समीक्षा होती है कि क्या गलत हो सकता है और फिर इस बारे में राष्ट्रीय सरकार को जानकारी दी जाती है ताकि आगामी सत्रों में वो गलतियाँ सुधारी जा
सकें।
भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफरिन के शब्द। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए WHO टीकाकरण को अनिवार्य करना जरूरी नहीं समझता। COVID-19 संकट अभी जारी है, ऐसे में इन वैक्सीनों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। डॉक्टर रॉड्रिको ऑफरिन ने कहा कि COVID-19 के कारण दुनिया भर में हो रही तबाही के बीच ये वैक्सीनें उम्मीद की नई किरण लेकर आई हैं।
As COVID-19 continues, vaccines bring in a strong hope or a
COVID-19 अभी फैल रहा है और ऐसे में वैक्सीन ऐसा मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप बनकर आई है जिनसे बीमारी को फैलने और जिंदगियों की रक्षा करने की उम्मीद जगी है। लेकिन बेहतर सुरक्षा के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों को अधिक जोखिम है उन्हें पहले टीका दिया जाए। आने वाले महीनों में महामारी को नियंत्रित करने के अन्य मूलभूत सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। हमें निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को मजबूत करना होगा और इसके अलावा जिन लोगों को बीमारी का संदेह हो उनके लिए परीक्षण हमेशा उपलब्ध और सुलभ होना जरूरी है। साथ ही हमें जनता को कोविड से बचाव के लिए एहतियाती उपाय जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना होगा।
भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफरिन के शब्द। उन्होंने कहा कि देश में कोविड की जवाबी कार्रवाई बहुत सुसंगत और बेहतर तरीके से हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कोविड के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर ऑफरिन का मानना है कि COVID-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी टीकाकरण से लोगों की रक्षा करके हासिल की जानी चाहिए, न कि उन्हें बीमार बनाने वाले वायरस के संपर्क में लाकर। टीकों के असरदार साबित होने को लेकर आशंकाओं के बीच उन्होंने बताया कि वैक्सीन के प्रति विश्वास जगाने और हिचकिचाहट को कम करने की दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
We have seen and tackled hesitancy during vaccination campaigns, whether for polio, measles, recently, and even during routine immunization.
हमने टीकाकरण अभियानों के दौरान हिचकिचाहट देखी है और उससे निपटा है, चाहे फिर वो पोलियो का टीकाकरण हो, हाल ही में खसरे का या कोई आम टीकाकरण। वैक्सीन लगवाने में संकोच की स्थिति से निपटने के लिए समुदायों को इससे जोड़ना बेहद जरूरी होता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर परंपरागत रूप से वैक्सीन का विरोध करने वाले समूहों या क्षेत्रों की पहचान करना भी अहम है। COVID-19 का टीका लगवाने के बाद प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तियों के संदेश वैक्सीन से जुड़ी हिचकिचाहट का मुकाबला करने का एक और तरीका है। झिझकने वाले समूहों के साथ बातचीत, उनके संदेहों या उनके दिमाग में चल रहे मिथकों और टीकों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना भी कारगर उपाय है।
Their doubts or maybe myths in their head that there is certain beliefs around vaccines.
भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफरिन के शब्द। डॉक्टर रॉड्रिको ने जोर देकर कहा कि टीकाकरण के बावजूद अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को जारी रखना और कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वायरस के पास फैलने का अवसर रहता है तब तक उसके विभिन्न प्रकार सामने आ सकते हैं। इसलिए पूर्ण बचाव के लिए अभी भी हाथ धोना, मास्क पहनना और सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाना जारी रखना होगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वर्ष 2020 को मौत, त्रासदी और निराशा का साल करार देते हुए कहा है कि कोविड 19 से हर देश और हर अर्थव्यवस्था में तबाही मची है। उन्होंने गुरुवार को यूएन महासभा में सदस्य देशों के समक्ष कार्रवाई के लिए अहम प्राथमिकताओं का खाका पेश किया और कहा कि दुनिया को साथ मिलकर एकजुट प्रयासों के जरिए 2021 को संभावनाओं और उम्मीदों का साल बनाना होगा। उन्होंने शोक जताया कि संयुक्त राष्ट्र परिवार के साथियों सहित अब तक महामारी से 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसका मानवता पर बोझ और अर्थव्यवस्था के लिए कीमत लगातार बढ़ रही है। यूएन प्रमुख ने चिंता जताई कि भू राजनैतिक तनावों के कारण शांति के लिए सामूहिक प्रयास कमजोर हुए हैं, मानवीय जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, मानवाधिकारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और नफरत भरे संदेश व भाषण बढ़ रहे हैं। महासचिव गुटेरेश ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2020 की त्रासदी और जोखिमों को पीछे छोड़कर 2021 में दुनिया को फिर प्रगति के मार्ग पर लौटना होगा।
2020 brought us tragedy and peril. 2021 must be the year to change gear and put the world on track. We need to move from death to health, from disaster to reconstruction, from despair to...
हमें मौत से स्वास्थ्य, त्रासदी से पुनर्निर्माण, निराशा से उम्मीद, काम के पुराने ढर्रों के बजाय रूपांतरकारी बदलावों की ओर जाने की आवश्यकता है। ये लोगों, अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और पृथ्वी के कल्याण को सुनिश्चित करने का समय है। ये संभव है, हमें इसे करना होगा एक साथ मिलकर। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने वर्ष 2021 के लिए अपनी जिन प्राथमिकताओं को पेश किया है उनमें कोविड-19 पर जवाबी कार्रवाई, समावेशी और टिकाऊ पुनर्बहाली, प्रकृति के साथ समरसतापूर्ण संबंध, मानवाधिकारों पर हमलों की रोकथाम, निर्धनता और विषमता की महामारी से लड़ाई, भू राजनीतिक दरारों को पाटा जाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अवसरों का लाभ उठाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन पर कराए गए एक सर्वेक्षण में शामिल 12 लाख में से 2/3 लोगों का मानना है कि जलवायु संकट से वैश्विक स्तर पर आपात हालात पैदा हो गए हैं, जिससे निपटने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कराए गए सर्वेक्षण को जलवायु परिवर्तन पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे माना जा रहा है, जिसे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी वाले 50 देशों में कराया गया। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
सर्वे में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि जनता अपने नीति निर्धारकों को किस तरह से जलवायु संकट से निपटते हुए देखना चाहती है। जलवायु अनुकूल खेती से लेकर प्रकृति की रक्षा तक और कोविड-19 से लेकर हरित पुनर्बहाली तक, सर्वेक्षण लोगों की आवाजों को जलवायु चर्चा के अग्रिम मोर्चे पर लाता है। यह इंगित करता है कि किस तरह से देश जनता के समर्थन के साथ इस विकराल चुनौती का सामना करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। UNDP के मुताबिक जलवायु परिवर्तन पर पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर जनता की राय शुमारी की गई है। सर्वेक्षण में प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या वे जलवायु परिवर्तन को वैश्विक आपात स्थिति मानते हैं। साथ ही 6 कार्रवाई क्षेत्रों में 18 अहम जलवायु नीतियों के प्रति उनके समर्थन को जानने का प्रयास किया गया। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, परिवहन, भोजन एवं खेत, प्रकृति और लोगों की रक्षा। सर्वेक्षण के लिए लक्षित 12 लाख लोगों में से 50% से ज्यादा लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिन्हें नियमित चुनावों में वोटिंग का आमतौर पर अधिकार नहीं है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक लोगों ने मौजूदा हालात से परे जाकर व्यापक जलवायु नीतियों को अपनाए जाने का समर्थन किया है। उदाहरण स्वरूप सर्वे में शामिल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 10 में से 8 देशों में बहुमत ने नवीनकरणीय ऊर्जा का समर्थन किया है। सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाले 10 में से 9 देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, बिजली चालित कारों, बसों या साइकिलों के इस्तेमाल का समर्थन किया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि व्यक्ति की शिक्षा के स्तर और जलवायु परिवर्तन के प्रति उसकी आकांक्षा के बीच सीधा संबंध है।
हाल के सालों में विभिन्न देशों की अदालतों में जलवायु संबंधी मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से कोर्ट अब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के एक अहम मोर्चे के रूप में उभर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन पर्यावरण एजेंसी की रिपोर्ट यूनेप ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में जलवायु संबंधी मुकदमे दुगने हो गए हैं। इस वजह से सरकारों और निकायों पर जलवायु संकल्पों को लागू करने का दबाव बढ़ रहा है और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन प्रयासों की दिशा में मापदंडों का स्तर ऊंचा हो रहा है। रिपोर्ट दर्शाती है कि जलवायु संबंधी मुकदमे न सिर्फ अब आम हो चले हैं बल्कि उनमें सफलताएं भी मिल रही हैं। विश्व 2017 में 24 देशों में जलवायु परिवर्तन से जुड़े 884 मुकदमे लड़े गए थे। वर्ष 2020 के अंत तक यह संख्या 38 देशों में बढ़कर 1,500 से ज्यादा हो गई है। जलवायु संबंधी अधिकांश मुकदमे अभी उच्च आय वाले देशों में ज्यादा हैं, लेकिन हाल के समय में कोलंबिया, भारत, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में इन मुकदमों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार वादी यानी प्लेंटिफ्स की पृष्ठभूमि में विविधता नजर आने लगी है और इनमें गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, वरिष्ठ नागरिक, प्रवासी और आदिवासी लोग हैं।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया भर के 7 युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं को पृथ्वी के युवा चैंपियंस पुरस्कार से नवाजा है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को स्थायी पर्यावरणीय परिवर्तन से निपटने में अभिनव योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी के युवा चैंपियनों के दूसरे भाग में मुलाकात कुछ अन्य मौलिक नव प्रवर्तकों से। ग्रीस के 26 वर्ष के लेफ्टेरिस अरापाकिस को ही लीजिए। उन्होंने देश में प्लास्टिक की समस्या के निवारण के लिए एक ऐसी प्रशिक्षण कंपनी की स्थापना की है जो स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने के साथ साथ समुद्र से प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे न केवल मछली पालन बेहतर तरीके से होता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करने में भी सहायता मिलती है। लेफ्टेरिस अरापाकिस बताते हैं,
जब हम इसके लिए पाठ्यक्रम चुन रहे थे तो हम ये जानकर स्तब्ध रह गए कि समुद्र से मछुआरों के जाल में केवल मछलियां नहीं बहुत सारा प्लास्टिक भी फंसकर बाहर आता था। तब हमने मछुआरों को समुद्र से निकला प्लास्टिक वापस जमीन पर लाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। इस प्लास्टिक को हमने स्थानीय कंपनियों के जरिए रिसाइकल करना शुरू किया और इसके 50% हिस्से से नई उपयोगी वस्तुएं बनाना शुरू किया। फिलहाल हम 700 से ज्यादा मछुआरों के साथ काम कर रहे हैं और हर महीने 20,000 किलो प्लास्टिक कचरा साफ कर रहे हैं।
We are cleaning around 20,000 kilos of plastic every month.
संयुक्त राष्ट्र में 2020 के युवा पृथ्वी चैंपियन ग्रीस के लेफ्टेरिस अरापाकिस के शब्द। पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करते हुए चीन में बीजिंग की एक युवती जियाओ युआन रेन ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिससे चीन के ग्रामीणों को ये मालूम होता है कि उनका पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसके जरिए गांव के लोगों को यह मालूम करने में आसानी होती है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पानी कहाँ मिलेगा। जियाओ युआन रेन के शब्दों में,
मेरी कंपनी युवा छात्रों के साथ साझेदारी करती है। ये छात्र हमसे प्रशिक्षण पाकर दूसरे इलाकों में जाते हैं और हमारी दी हुई टेस्टिंग किटों से पानी में अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रेट TDS का परीक्षण करते हैं जिससे वो पीने के पानी की गुणवत्ता जांच सके। फिर हम अपने तकनीकी मंच पर उनकी जरूरतों का खाका तैयार करते हैं और अपने साझेदारों को इसके समाधान उपलब्ध करवाते हैं।
Onto our data platform and deliver to our partner solution providers.
संयुक्त राष्ट्र में 2020 की युवा पृथ्वी चैंपियन जियाओ युआन रेन के शब्द। अमेरिका की एक युवती भी इन 7 युवा पृथ्वी चैंपियनों में शामिल है जो वर्चुअल रियलिटी की मदद से सैल्मन मछलियों को बचाने के अभियान में सक्रिय हैं। नीरिया अलिसिया गार्शिया स्थानीय कार्यकर्ताओं के समुदाय के साथ मिलकर वार्षिक रन फॉर सैल्मन अभियान का समन्वय करती हैं। इस अभियान के तहत वो कैलिफोर्निया के सबसे बड़े जल क्षेत्र में सैक्रामेंटो चिनूक सैल्मन मछली की ऐतिहासिक यात्रा को जीवंत करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करते हुए इस अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं।
जब शास्ता बांध बना तो उससे विनिमयम विंतु कबायली इलाकों में पानी भर गया और उसने चिनुक सैल्मन मछलियों के पानी की सतह पर आने का रास्ता बंद कर दिया। सामुदायिक संरचना के लिए अहम उन पवित्र की स्टोन प्रजातियों की वापसी बहुत जरूरी है। उनमें अनुवांशिक रूप से तैरकर पहाड़ के ऊपर 300 मीटर तक जाने की ताकत है, इसलिए उनके तैरने के लिए एक जलधारा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वो इस जल का संरक्षण कर सकें। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि इससे लोगों को यह देखने, सुनने, महसूस करने में मदद मिलती है कि हम किसे बचाना चाह रहे हैं, और वो भी उससे प्यार करने लगते हैं।
कोविड-19 महामारी के दुष्परिणामों से एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास तेज करने होंगे, जिनमें इन मुद्दों पर जागरूकता के साथ साथ जमीनी स्तर पर इस तरह के प्रयास अहम योगदान दे सकते हैं।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।